नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम सब मिलकर के आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारे इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका मतलब कि बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को जानने के लिए साइंस के टर्म्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और या तो केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उन चीजों को काउंट करते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस प्रोवाइड करती हैं, यानी वो चीज कैसी दिखती है, वो कितनी स्ट्रांग है, ये सारी चीजें। और बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी चीज के कॉम्पोजिशन पर ध्यान देते हैं, यानी वो चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है, वो कैसे कब रिएक्ट करेगी, चीज के साथ नहीं रिएक्ट करेगी, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजों को हम केमिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। वैसे ही बच्चों, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और स्पेशली जब हमें अपने भारत के बारे में जानना है, जब हम अपने भारत के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि साइंस के वो दो प्रॉपर्टीज जिनको हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा, वो यहाँ भी अप्लाई होती हैं। केवल नाम बदल जाता है और कुछ फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम खुद ही है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि हमारे इंडिया का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेडेड है, कौन से लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड्स को क्रॉस करता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और इसी के साथ साथ केमिकल, जिसको हमने नाम दिया है, उसको हम यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल इंडिया के स्फीयर में जानने की कोशिश करेंगे। खैर, अभी हमें इस चैप्टर में इंडिया के केवल फिजिकल अपीयरेंस को देखना है। तो चलिए बच्चों, हम बिना किसी देरी के आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमें इस चैप्टर को समझने से पहले रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि कभी कभी जब हम अपने एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, यानी जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जिनके आंसर्स डायरेक्टली हमें इन पैराग्राफ्स के सेंटेंसेस में मिल जाते हैं। इसका मतलब कि वो क्वेश्चंस बहुत टफ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, इसी वजह से वो हमें एज इट इज हमारे पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें हमारे इंट्रोडक्शन में, यानी इस चैप्टर के परिचय में क्या पढ़ने को मिलता है। तो बच्चों, आप सभी कितने पेज नंबर पर हैं? मेरी बुक में ये चैप्टर पेज नंबर 113 से स्टार्ट होता है। तो चलिए पेज नंबर 113 के इंट्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। इसमें एक संस्कृत का श्लोक लिखा है और श्लोकों के साथ इस चैप्टर का शुरुआत होता है। इसमें लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम् वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। भारतीय प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हेमवान एवं हेमकूट पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतु बंध _ हिंद महासागर तक फैला है और जिसमें भारतीय संतति बसती है, को भारत कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था। ईरानियों ने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू एवं इस भूभाग को हिंदुस्तान का नाम दिया। रोम निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा यूनानियों ने इंडोस व इस देश को इंडिया कहा। यही देश विश्व में आज भारत के नाम से विख्यात है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश हमारे देश के लगभग मध्य से गुजरती है। यह रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है। भारत का प्रामाणिक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है। यह रेखा इलाहाबाद के पास से गुजरती है। भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व पश्चिम से 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण से 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर और समुद्रीय सीमा 7516.6 किलोमीटर अंडर ब्रैकेट लक्षद्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीपों सहित है। इसका क्षेत्रफल 32,087.263 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भारत की अस्थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ जनगणना 2011 के अनुसार है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो बच्चों, यहाँ खत्म होती है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग। चलिए अब हम समझते हैं कि अभी तक हमने जो रीड किया उसे हमें क्या सीखने को मिलता है। बच्चों, ये एक इंट्रोडक्टरी रीडिंग था, यानी जो इंट्रोडक्शन हमें चैप्टर से पहले दिया होता है कि हमें आगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले एक संस्कृत का श्लोक दिया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब कि ये हमारे भारतीय ग्रंथ बहुत पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है बच्चों विष्णु पुराण। ये उसका ही एक श्लोक है जिसका मतलब है कि पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमावन और हेमकुट पर्वत तंत्र से लगकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है, हम इसे भारतीय संतति के नाम से जानते हैं, जो आज भारत के नाम से प्रसिद्ध है। इसका मतलब कि बच्चों, आप रफली ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत एंशियंट टाइम में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो रही नहीं होगी हमारे कंट्री के बारे में, लेकिन फिर भी जब लिखा होगा इस श्लोक को, लिखने वाले के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ओशियन के नदर्न साइड में जो लैंड का पोर्शन है, ये लिखा है ना उत्तरम यत समुद्रस्य, और फिर जो हिमाद्री से यानी कि हिमालयों के दक्षिण में है वो लैंड भारत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, सबसे पहले इस जमीन पर यानी कि जो भारत का लैंडमार्क है, भारत का रीजन है, वहां पर एक ट्राइब आई थी और इस ट्राइब को बच्चों हम आर्य के नाम से जानते हैं, और इसी वजह से हम इस धरती को यानी हिमालयों के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में जो लैंड है इसको हम आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ईरानियों ने सिंधु नदी के जो तट है इस पर बसे हुए एक प्रजाति को, ट्राइब को हिंदू के नाम से कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कई बार फॉरेनर्स को स प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उन्होंने सिंधु को सिंधु ना कहकर बल्कि हिंदू कहना शुरू कर दिया। और हमारे एंशियंट टाइम में, यानी जिस समय की हम अभी बात कर रहे हैं, जिस समय में ये श्लोक लिखा गया है, उस टाइम पर हिंदू धर्म जैसा तो कोई धर्म था ही नहीं। लेकिन यही सिंधु को जब हिंदू प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दिया और इसी हिंदू को एक धर्म का नाम दे दिया। और ऐसे ही जो रोम में रहने वाले लोग थे, यानी रोम निवासी, उन्होंने भी सिंधु नदी को इंडस कहना शुरू किया। और यूनानी लोग, यूनानी यानी कि जो ग्रीक पीपल हैं, उन्होंने इंडोस कहना स्टार्ट किया। और इन्हीं सारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आज हमारे भारत का नाम इंडिया, हिंदुस्तान निकला है। और आज भी हमारा भारत इसी नाम से विख्यात है। ये समझ में आया हमें कि हमारे भारत देश का नाम आखिर में कहां से निकल के आया। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे बच्चों कि हमारे एंशियंट सोर्सेस में कहां मेंशन किया गया है कि भारत का लैंडमास कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आप उस इंसान को ये जवाब दे सकते हैं कि विष्णु पुराण में श्लोक जो लिखा है, वो श्लोक हमें ये बताता है कि ओशियन के नदन साइड में और हिमालयों के सदन साइड में जो लैंडमास है, हम उसे भारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें हमारे सेकंड पैराग्राफ में हमारे भारत का, यानी इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया गया है। ये याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, हमने अपने पहले की क्लासेस में ये पढ़ा है कि हमारा इंडिया अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। हमने वैसे चार हेमिस्फीयर्स देखे, सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हमारा भारत भूमध्य रेखा, यानी जो मेडिटेरेनियन और इक्वेटर जिसको हम जानते हैं, उसके उत्तर में यानी नॉर्थ में 8 degree 4 से लेकर के 37 degree 6 के नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैली हुई है। और ऐसे ही 68 degree 7 से लेकर के 97 degree 25 ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक ये फैला हुआ है। और हमारे अर्थ पर जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों लाइन्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इसका अक्षांश है बच्चों 23 degree 30 north, ये हमारी कंट्री को बीच से काटती है, यानी कि दो पोर्शन में डिवाइड करती है और बिल्कुल बीच से होकर के गुजरती है और इसको साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करती है। तो बच्चों, अभी आपके पास काम ये है कि आप इंडिया का मैप देखिए और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन को देखिए कि वो हमारे इंडिया के किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में यहाँ बताया गया है, जो हमारे इंडिया के टाइमिंग सिस्टम को डिसाइड करती है। इसको हम इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो इस लाइन का जो लैटिट्यूड है वो है 82 degree 30 east। ये इलाहाबाद के पास से होकर के गुजरती है। अगर आपको याद होगा तो हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी में इस लाइन के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो आप एक बार फिर से क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक में इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हमें हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडिया के एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है, यानी कि ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक 3,214 किलोमीटर्स में स्प्रेड है, यानी कि 3,214 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। वैसे ही अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो हमारा इंडिया 2,933 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी बाउंड्री जो है, जो केवल लैंड में फैली हुई है, वो है 15,200 किलोमीटर्स में। वैसे ही वो बाउंड्री जो ओशियन को टच करती है, यानी समुद्रीय सीमा, वो लगभग 7,516.6, यानी 7,516.6 किलोमीटर्स में फैली हुई है। और इन बाउंड्रीज में लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार की जो आइसलैंड्स हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। हमारे इंडिया का पूरा एरिया, यानी टोटल एरिया, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल भी कहते हैं, वो है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर्स में हमारे पूरे इंडिया का एरिया फैला हुआ है। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बहुत सारी कंट्रीज टच करती हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे इंडिया को टच करती हैं। तो हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर का एरिया, जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, वो भी हमारी कंट्री के जम्मू कश्मीर स्टेट को टच करता है। और वैसे ही चाइना जो हमारा पड़ोसी है, वो हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स को टच करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा बाउंड्री हम अरुणाचल प्रदेश की चाइना के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर भी टच करता है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स भी चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं। इसके बाद नेपाल जैसा एक सुंदर देश भी हमारा पड़ोसी है, और इंडिया के कई सारे स्टेट्स नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। उन स्टेट्स में सबसे पहला नाम है बिहार का, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये पांचों स्टेट्स नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। नेपाल के बाद बारी आती है बच्चों भूटान की। भूटान एक खुशहाल देश है, जहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं, और भूटान को टच करने वाले चार इंडियन स्टेट्स हैं, जिनका नाम है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम। भूटान के बाद बारी आती है हमारे पड़ोसी म्यांमार की। इसको हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, वो आपने गाना सुना है ना, मेरे पिया गए रंगून, वो रंगून पहले बर्मा का हिस्सा था, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। और म्यांमार के बाद हमारा एक और पड़ोसी देश है, जिसका नाम है बांग्लादेश, वो हमारे ईस्ट में पड़ता है। बच्चों, पहले ये देश हमारे ही देश का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों के विभाजन नीति के चलते हमारी कंट्री से बांग्लादेश को अलग होना पड़ा। खैर, वो तो इतिहास का मामला है। बांग्लादेश से हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं वो स्टेट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे स्टेट्स बांग्लादेश से अपने सीमा साझा करते हैं, यानी कि बॉर्डर शेयर करते हैं। बच्चों, अगर हम एरिया वाइज बात करें, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का सातवां बड़ा देश है। इसका मतलब क्या कि हमारे देश के कंपैरिजन में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया से बड़ी हैं, लेकिन हमारा इंडिया भी 7th नंबर पर रैंक करता है। और अगर वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 121.02, इसका मतलब 121.02 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग है? तो बच्चों याद रखिएगा कि ये पॉपुलेशन पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है। अब आप सोच रहे होंगे पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है। तो बच्चों किसी भी देश या राज्य के जनसंख्या और उस जनसंख्या की गतिविधि या उसकी कॉम्पोजिशन को जानने के लिए हम हर 10वें साल पर एक पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए सर्वे करते हैं कि कौन सी चीज़ कितने चीज़ों से मिलकर बनी है या उसका क्या नंबर है, बिल्कुल वैसे ही। और इसी सर्वे के बेसिस पर जो रिज़ल्ट आता है उसको हम पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं। और इस पॉपुलेशन सेंसस में और भी कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। खैर पॉपुलेशन सेंसस के बारे में डिटेल में आपको बाद में जानने को मिलेगा। अभी आप केवल यहाँ समझ लीजिए कि लास्ट पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना हमारी 2011 में कंप्लीट हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना कब होगी, तो आप 2011 में 10 ऐड करके बताइए कि नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसी पैराग्राफ में ये जानकारी मिलती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एरिया वाइज हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.42% कवर करता है। इसका मतलब कि अगर 100% एरिया हम लेते हैं एज अ यूनिट पूरे वर्ल्ड के लिए तो हमारा इंडिया 2.42% कवर करता है एरिया वाइज। आपको लग रहा होगा बच्चों कि 2.42 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये वाकई में एक देश के लिए इस नंबर को होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे विश्व का यानी ऑल ओवर वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन हमारी कंट्री होल्ड करती है। ये भी खैर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इतनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है कि बच्चों रिसोर्सेज जो हैं वो अपने आप में श्रिंक हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर आपको पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है तो उसके साथ साथ रिसोर्सेज को भी आपको इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लांट्स को ग्रो करें और जितना भी पॉसिबल हो उतने एसी, फ्रिज इन सब का यूज़ कम करें। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें आगे के नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग हैं पेज नंबर 113 पर। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। आप इसको ध्यान से देखिए। एज यूजुअल हम पहले इसकी एक रीडिंग करेंगे फिर बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लिखा है भारत की विशालता के कारण यहाँ अनेक भौगोलिक विविधताओं का मिलना स्वाभाविक है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.5% पर्वतीय भाग, 18.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी एवं 43% मैदानी भाग है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत जैसी विशाल श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों बर्फीली चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखड्ड है। भौतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से हमारे देश को 5 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो बच्चों, हमने जो अभी पैराग्राफ रीड किया उसमें हमें अपने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी मिल रही है। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? तो बच्चों, ये फिजिकल लैंडस्केप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इमेजिन करिए कि किसी ने आपको बहुत छोटे छोटे सामानों से भरा हुआ एक बक्सा पकड़ा दिया। ऊपर से देखने में तो वो एक बक्सा है, लेकिन अगर आप अंदर खोल करके देखेंगे तो उस बक्से में बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। अब उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ कॉपी या फिर पेंसिल्स हैं, कुछ पेंस हैं, या फिर कुछ लड़कियों के मेकअप के सामान हैं, तो कुछ लड़कों के खेलने के लिए भी टॉयज रखे गए हैं। तो बच्चों, ऊपर से जो चीज़ देखने में बक्सा लगती है उसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, इसका मतलब कि डाइवर्सिटी है, और हम उन चीज़ों को एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ फ्रूट्स होंगे, कुछ खेलने की चीज़ें होंगी, कुछ लड़कियों के मेकअप की चीज़ें होंगी, तो कुछ कॉपी पेंसिल स्टेशनरी की चीज़ें होंगी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सभी के काम आ सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक डिफाइन कैटेगरी, जिसको हम जेंडर कहते हैं, किसी एक जेंडर के काम आएंगी, दूसरे जेंडर के काम नहीं आ सकती हैं। बिल्कुल वो बक्सा ही हमारा भारत है, यानी कि ऊपर से देखने में वो एक देश लगता है, लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, वो हमारे भारत के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो फीचर्स मिलते हैं हमारे देश में, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। कहने के लिए कि देश एक है लेकिन भाषाएं बहुत सारी हैं, लोगों के रहन सहन बहुत सारे हैं, त्यौहार लोग बहुत सारे मनाते हैं अलग अलग, यहाँ की मिट्टी अलग है हर जगह पर, लेकिन फिर भी वो देश पूरा एक ही कहलाता है। तो इसको कहते हैं बच्चों डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता, और इसी डाइवर्सिटी के चलते हमारा देश बहुत फेमस है कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी यहाँ पर यूनिटी प्रिवेल करती है। तो इसीलिए हम आज देखेंगे कि भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो लैंडस्केप्स हो, वेदर के ऊपर हो, अलग अलग प्रकार के लोग हो, अलग अलग सीजन्स हो, अलग अलग उनके फेस्टिवल्स हो, ये सभी हम समझने की कोशिश करेंगे फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू। तो खैर, जो ये टॉपिक आज हमें कवर करना है, इसमें हम केवल अलग अलग प्रदेशों के बारे में जानेंगे कि कैसे एक पोर्शन में एक जैसा सीजन या वेदर होने के कारण, वहाँ पर एक जैसी मिट्टी पाए जाने के कारण, एक जैसा लैंडस्केप पाए जाने के कारण, हम उसको बाकी सारे लैंडस्केप से डिफरेंट मानते हैं, और इसी विविधताओं के लिए हमारा देश बहुत विख्यात है। बच्चों, इसको, यानी कि हमारे देश को उपमहाद्वीप का नाम दिया जाता है। उपमहाद्वीप का मतलब सब कॉन्टिनेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा भारत दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं ना बच्चों, इसने हमारे कंट्री को कवर किया है। आप चाहे ईस्टर्न कोस्ट देख लीजिए, यानी कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सारे रीजन्स, और इसके बाद हम अगर वेस्टर्न घाट देखेंगे, यानी महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ये स्टेट्स भी ओशन से लगे हुए हैं, और इसी के कारण हम भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। पूरे कंट्री का जो एरिया है बच्चों, वो उसका 10.5% माउंटेन से भरा हुआ है। यानी इमेजिन करिए कि आपने एक ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ में 100% दिया है पूरी कंट्री को, 100% में से 10.5% आपने दे दिया माउंटेनियस रीजन्स को, इसके बाद 18.6% दिया आपने हिल्स को। अब बच्चों एक और ध्यान देने वाली बात है कि पर्वत में और पहाड़ में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप केवल मेरे बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने 100% में से 10.5% दे दिया माउंटेनियस रीजन्स को और 18.6% दे दिया हिली रीजन्स को, तो बच्चों इसके बाद हमारे पास जो पोर्शन बचता है उसका, यानी कि 29% माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 27.7% आपने दे दिया प्लेटियूज को, जिसको हम हिंदी में पठार के नाम से जानते हैं, और इसके अतिरिक्त 43% हमने दिया प्लेन्स को यानी मैदानी भाग को। तो ये हुआ बच्चों स्टैटिस्टिक हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स का। हमारी कंट्री के नॉर्थ में आप सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रीजन्स हैं, जिसको हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जो कि सालों साल बर्फ से ढकी रहती है, और बहुत सुंदर सुंदर घाटियां भी हैं बच्चों, और घाटियों के अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे भी हैं। इसके बावजूद भी जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, इसी के बेसिस पर हमारी कंट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन्हीं 5 लैंडस्केप्स को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट जो 5 लैंडस्केप्स पढ़ने हैं, यानी कि 5 भागों में जिसको हमारे देश को बांटा गया है, उन 5ों भागों को हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप आज पढ़ाए गए टॉपिक को भी रीड करिएगा बच्चों, और जो हम कल पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को भी रीड करके आइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।